कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग। लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग में अपनी बात अपनी भाषा में।
उदय प्रकाश हमारे समय के अत्यंत संजीदा, अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत कुशाग्र कहानीकार हैं, इसमें शायद ही किसी को कोई संदेह हो। कवि भी बहुत बड़े हैं, कलाओं की भी बड़ी अच्छी समझ उनको है और अच्छे इंसान भी हैं। कुल मिला के उनका जो व्यक्तित्व बनता है एक साहित्यकार, संस्कृति कर्मी का, वह व्यक्तित्व एक ऐसी उपस्थिति का बनता है जिसके होने से हम आश्वस्ति पाते हैं। अनेक किताबें लिखी उन्होंने, अनेक कहानी संग्रह हैं, अनेक कविता संग्रह हैं, अनेक भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में उनकी कहानियों और कविताओं के अनुवाद हुए हैं। कई देशों में उनकी कहानियों और कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उनकी कहानियों पर फिल्में बनी हैं। अभी हाल ही दो महीने पहले मोहनदास का राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शन भी हुआ था सिरीपोर्ट में। पर मेरा यह आग्रह नहीं है कि वो केवल कहानीकार ही हैं और इस नाते उनको ये मैंने मंच दिया है। मैं ये मानता हूं, उन्हीं की तरह मैं भी मानता हूं कि वे मूलतः कवि हैं और कवि की संवेदना ही उनके कहानीकार को बड़ा बनाती है। लेकिन मौका चूंकि एक कहानीकार के कहानी पाठ का है, इसलिए दो चार बातें इनकी कहानियों पर थी। अब ये सचमुच बहुत हैरतअंगेज बात है कि टेपचू राम सजीवन की प्रेम कथा और अंत में प्रार्थना, मैंगो सिल, पाल गुमरा का स्कूटर, वारन हेस्टिंग्स का सांड, पीली छतरी वाली लड़की, दिल्ली की दीवार जैसी कहानियों का एक ही कहानीकार है, अनेक कहानीकार नहीं है। और ये सारी कहानियां मैं अपने सीधे आईने में देखता हूं और अपनी समझ से अगर उसको व्यक्त करता हूं तो मैं कहूंगा कि ये सारी कहानियां आज का जो पातकी समय है, जिस विकट समय में हम जी रहे हैं, उसके प्रतिपक्ष में खड़ी हैं और मनुष्यता के पक्ष में संघर्ष कर रही हैं। ऐसे पात के समय में जहां सब कुछ बिकाऊ है, जहां हर तरफ संतरास है, हर तरफ दुखा है, वहां ये कहानियां मनुष्य की संवेदना के साथ, उसके संकल्प के साथ और उसकी विराट मनीषा के साथ, जिसमें भविष्य के प्रति संघर्ष करने की अदम्यता है, उसके पक्ष में खड़ी होती है। कई स्तरों पर देखें तो यथार्थ का अतिक्रमण भी करती हैं ये कहानियां, केवल यथार्थवादी कहानी कह के और प्रेमचंद की परंपरा में बिठा देने से ही काम नहीं चलता, अगर हम उदय प्रकाश की कहानियों पर बात करें। और अनेक आयनों में अनेक कहानीकारों और अनेक पद्धतियों के खांचे में उन्हें उनकी कहानियों के रख के बात की जा सकती है, विवाद पैदा किए जा सकते हैं, होते रहे हैं, उन विवादों में मैं नहीं जाना चाहता। पर एक पाठक के नाते मुझे हमेशा ये लगता रहा है कि ये कहानियां अपनी भाषा में कहानी के दर्शन के लिए, कहानी की बनावट के लिए और कहानी की जीवंतता के लिए एक प्रतिमान बनती हैं। और लगभग सारी कहानियों के साथ जो बातें मैं कह रहा हूं लागू होती है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, पर ये मेरी राय है और मैं इसके लिए आपसे भी ये आग्रह नहीं कर सकता कि आप भी इस राय को बनाएं और माने, लेकिन मेरी अपनी राय है।
सबसे पहले मैं आदरणीय नामवर जी को और अत्यंत प्रिय अपने मित्र ज्योतिष जोशी जी को प्रणाम करता हूं और फिर सभी लोग जो बैठे हुए हैं इसमें राजेंद्र जी हैं, केदार जी हैं, अर्चना जी हैं, हमारे बहुत पुराने साथी भी हैं, ज्ञानेंद्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन सबका मैं अभिवादन करता हूं। मैंने कहा था ज्योतिष जी से कि मेरे पास कोई नई कहानी तो भी नहीं है। मैंने सवाल की मजाक में कहा कि आजकल एक शब्द चला, एक वाक्य चला हुआ है कि ग्रिल करने का, फिलिस्तीन को ग्रिल किया जा रहा है, अफगानिस्तान को ग्रिल किया जा रहा है, इराक को ग्रिल किया जा रहा है, और ये ग्रिल तब से किया जा रहा है जब इकोनॉमिक सैंक्शन होते हैं, उसके बाद फिर कार्रवाइयां होती हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो हिंदी समाज में बहुत अरसे से ग्रिल किया जा रहा व्यक्ति हूं, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार, फिर लिखना ऐसा कि जब आप लिखें तो वो सब न लिखें जिसे लिखना जरूरी है। तो मैंने कहा ज्योतिष जी से कि मैं कुछ कहानियां ऐसी पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा मत पढ़िए, आप कहानियों के अंश पढ़िए। मैं मानता हूं कि बात और पहले की कहानियों के ही कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो आप लोगों को अच्छे लगेंगे वो मैं सुनाता हूं, और आप अगर चाहेंगे कि मैं और कुछ पढ़ूं तो वो भी पढ़ूंगा। ये एक संग्रह है दत्तात्रेय के दो, इसमें से एक दो छोटी छोटी कहानियां पढ़ता हूं। एक कहानी है जिस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है, एक कहानी है खराब कलम, उसके पहले एक छोटी सी कहानी और मिलना जुलना। मिलना जुलना, दिल्ली में ऐसे लोगों की संख्या इधर बहुत बढ़ गई थी जो सिर्फ उसी से मिलते थे जिनसे उनका कोई काम होता था। विनायक दत्तात्रेय ने अरसे से ऐसे लोगों से मिलना बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि वो लोग खुद किसी काम के न थे। दूसरी कहानी है छोटी सी खराब कलम। उन दिनों विनायक दत्तात्रेय हिंदी में कविताएं लिखते थे, उनके पास एक ही कलम थी जो सस्ती थी, पुरानी हो चुकी थी, और लिखते हुए उसकी निब से किर किर की आवाज आती थी। विनायक दत्तात्रेय जब कविता लिखते तो उनकी कलम से निकलने वाली किर किर की आवाज से दिल्ली का कोई कवि न ठीक से कविता लिख पाता न चैन से सो पाता। इसलिए जब विनायक दत्तात्रेय कविता लिखते तो कवि उनकी छप्पर पर ढेले मारते, कुछ ढेले विनायक दत्तात्रेय को, कुछ उनकी पत्नी, कुछ बच्चों और कुछ पड़ोसियों को भी लगते। आखिर सब ने मिलकर उन्हें एक दिन समझाया और विनायक दत्तात्रेय ने कविता लिखनी छोड़ दी। सुनते हैं इधर वे कहानियां लिख रहे हैं। किर, किर, किर। एक और छोटी सी कहानी है मार्क्स का वाक्य। वह इमारत बहुत बड़ी थी, विशाल। उस इमारत के अंदर उस राजनीतिक दल के नेता और पदाधिकारी बैठते थे जिसका कार्यालय उसमें था। जिस राजनीतिक दल का वह कार्यालय था वह दल पिछले 75 साल से समाज में बराबरी लाने, सभी को न्याय, भोजन, आवास, शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा दिलाने के लिए क्रांति की घोषणा हर साल करता था। हर साल बदलाव की उम्मीद में बहुतेरे नौजवान उस दल के साथ आ जुड़ते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों तक पोस्टर चिपकाते, दीवारों को रंगते, रैलियां और जुलूस निकालते, नारे लगाते वे बूढ़े हो जाते थे। उनमें से कुछ जो चालाक और समझदार होते थे वे इस दौरान कोई बिजनेस शुरू करके या नौकरी का जुगाड़ जमा कर लाइन से लग जाते थे। बाकी जो बचते थे वे जब ज्यादा बदहाल बूढ़े और चिड़चिड़े हो जाते थे तो उन्हें वह राजनीतिक दल गड़बड़ तत्व मानकर अपने संगठन से बाहर निकाल देता था। अभी भी हर साल वह दल मूलगामी सामाजिक बदलाव की घोषणा करता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी कोई उस इमारत के मुख्य दरवाजे पर पहुंचता है तो उसके मस्तिष्क में अचानक कोई संगीत सा पैदा होने लगता है, एक ऐसी कोई गूंज जो बहुत दूर से आती हुई लगती है। अगर कोई उस अनुगूंज को ध्यान से सुने तो वो पाएगा कि दरअसल वो संगीत कुछ और नहीं, मार्क्स का वह वाक्य है जो उसने लगभग 150 साल पहले धर्म के बारे में कहा था। मार्क्स ने कहा था कि संसार में इस बात को चर्च के भीतर बैठे पादरी सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, और अगर है भी तो ईश्वर कभी यहां आएगा नहीं। प्रश्न यह उठता है कि मार्क्स का धर्म के बारे में कहा गया यह वाक्य उस राजनीतिक दल के मुख्यालय के दरवाजे पर क्यों सुनाई देता है? क्या इसे के क्या किसी के पास इसका कोई उत्तर है? एक दो छोटी छोटी कहानियां और इसी में सुना देता हूं। ये भी इसी संग्रह से है। यह है विनायक का अकेलापन। जो भी दुर्दिनों में घिरता है दिल्ली उसे त्याग देती है। विनायक दत्तात्रेय भी दुर्दिनों में थे, दिल्ली ने उन्हें त्याग दिया था। न उनके पास कोई आता था न कोई उनका हाल पूछता था। टेलीफोन कभी बजता नहीं था, वे अकेले रह गए थे। अकेलापन और दुर्दिन के दिन बिताने का तरीका विनायक दत्तात्रेय ने खोज निकाला था। वे अपने कमरे के एक कोने पे जाकर खड़े हो जाते और पुकार कर पूछते, विनायक कैसे हो? फिर दूसरे कोने तक जाते और खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहते, मैं ठीक हूं विनायक, अपनी सुनाओ, कभी कभार आ जाए करो यार। अब एक आखिरी कहानी सुनिए, छोटी सी। यह उत्तर आधुनिक उपभोक्तावाद। उत्तर आधुनिक उपभोक्तावाद। दिवाली की रात थी, बच्चों ने कुत्ते की पूंछ में पटाखों की लड़ी बांध दी और बत्ती को तीली दिखा दी थी। पटाखे धड़ाधड़ फूट रहे थे और कुत्ता बदहवास होशो हवास खोकर चीखता भौंकता रोता गिरता पड़ता भाग रहा था। कुत्ता जब विनायक दत्तात्रेय के पास से गुजरा तो उन्होंने कुत्ते के सामने हड्डी के टुकड़े फेंक दिए। एक तरफ लालच में कुत्ता हड्डी चबा रहा था, दूसरी तरफ पूंछ में बंधे पटाखों के लगातार फूटने की वजह से चीख पुकार भी मचा रहा था। एक तरफ कुत्ते के मुंह से लार बह रही थी, दूसरी तरफ उसके गले से चीख निकल रही थी। अद्भुत ट्रेजिक कॉमिक दृश्य था। विनायक दत्तात्रेय हंसे। लोगों ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, देखो इसे, यह बिल्कुल तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी मनुष्य लग रहा है। उत्तर आधुनिक उपभोक्तावाद का दुर्दांत दृष्टांत। थैंक यू। मैं एक कहानी में हिम्मत करता हूँ पढ़ने की, थोड़ी सी है, छोटी बहुत छोटी है, लेकिन इसको आप इस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो अच्छी लगेगी। इसका शीर्षक है फिल्म। मैं एक फिल्म बना रहा हूं, इसे यूं भी कह सकते हैं कि मेरी एक फिल्म बन रही है। इसका बनना वर्षों से चल रहा है। मजे की बात यह है कि इस फिल्म में जितने भी लोग शामिल हैं उन्हें यह नहीं पता कि वे एक ही फिल्म में काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा किसी ने बताया भी नहीं है। कुछ भूमिकाएं ऐसी हैं जिनका अभिनय बहुत देर तक चलता है, वो कई कई बार दोहराया जाता है। कह सकते हैं कि उन भूमिकाओं का इस फिल्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उनके बिना ये फिल्म बन ही नहीं सकती। लेकिन इस फिल्म के वे अंश भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जहां भूमिकाएं और अभिनय बिल्कुल अप्रासंगिक और उलपटांग लगते हैं। बल्कि मेरा कहना तो यह है कि यही वे अंश हैं जिनसे यह फिल्म अपनी कुछ कलात्मक ऊंचाइयां हासिल करती है। उदाहरण के लिए, इन अंशों में ऐसे दृश्य हैं जिसमें अचानक कोई अपरिचित सा व्यक्ति कहीं से आता है, हड़बड़ी और थकान से भरा वो कहीं जाने का रास्ता पूछता है और फिर बिना कुछ सुने चला जाता है। फिर इस फिल्म में दोबारा वो कभी लौट कर नहीं आता। या फिर अचानक कोई औरत हंसती हुई या रोती हुई दिखती है, फिर वह अपने बर्तन समेटती है या कपड़े सुखाने लगती है। इसके बाद फिर पूरी फिल्म में वो कभी नहीं दिखाई देती। या फिर जैसे बस की सीट या ट्रेन की बर्थ पर बगल में कोई एक बूढ़ा सा आदमी बैठा रहता है, या बूढ़े की जगह कोई बहुत सुंदर और जवान लेकिन बिल्कुल अज्ञात लड़की होती है जिसका शरीर कई बार छू जाता है। वह खिड़की के बाहर देखती रहती है या कई बार अपने फ्लास्क से पानी निकाल कर पीती है। इस फिल्म में इतने के अलावा उसकी और कोई भूमिका नहीं है। ऐसे असंख्य लोग हैं जो इस फिल्म में कभी प्रकट नहीं होंगे। उदाहरण के लिए, जैसे कोई अचानक अपनी कटी हुई उंगलियों वाला हाथ भीख मांगने आगे बढ़ा देता है, साहस करके भी उसका चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती। सिर्फ वह गली हुई उंगलियों की हथेली ही है जिसकी फिल्म में भूमिका है। वह हाथ जिस व्यक्ति का है, उसका चेहरा कैसा है और वह है कौन, यह इस फिल्म में कभी पता नहीं चलता। इसे जानने के लिए किसी दूसरी फिल्म को देखने की जरूरत है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फिल्म में जो लोग काम कर रहे हैं वे एक साथ कई दूसरी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म में मेरे अलावा बाकी सभी किन्हीं दूसरी फिल्मों के उद्धरण हैं, जैसे स्वयं मैं कई दूसरी फिल्मों में उद्धरण हूं। इन उद्धरणों के द्वारा सिर्फ यह जाना जा सकता है कि एक कोई अन्य मूल फिल्म भी है जहां यह पात्र केंद्रीय भूमिका में है और क्षेपक की तरह यह उद्धरण उसी फिल्म से लिया गया है। लिया नहीं गया है बल्कि उद्धरण की तरह यह पात्र स्वयं इस फिल्म में चला आया है। कहने के लिए, इस फिल्म में जीवन से संबंधित सभी तरह के प्रसंग हैं। मृत्यु है, प्रेम है, शत्रुता है, बीमारियां और नौकरी, मारपीट, धोखाधड़ी आदि। कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं भी हैं, मसलन आजादी, क्रांति, हड़ताल, चुनाव, नारे, रैलियां आदि। बाजार वगैरह भी हैं, टेक्नोलॉजी है, रेडियो, टेलीविजन, कार, इंटरनेट, साइकिल, कंप्यूटर, कंडोम आदि हैं। इस फिल्म में फिल्म भी है, लेकिन सारी चीजों का होना कोई परिभाषा या कोई समझदारी प्रस्तुत करने के लिए नहीं है। वे बस हैं, बल्कि कह लें कि वे फिल्म का वातावरण है। उन्हें वहां किसी संगति में नहीं रखा गया है, वे स्वयं वहां उपस्थित हो गए हैं। उनका आविष्कार और विकास बहुत नैसर्गिक ढंग से हुआ है। लेकिन इस फिल्म के बारे में असली बात तो वह है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। कल रात 2 बजे मेरी नींद टूट गई और अचानक मुझे लगने लगा कि मेरे शरीर को जितनी नींद की जरूरत थी वो पूरी हो चुकी है। मेरी आंखें ही नहीं, मेरा पूरा शरीर अपनी नींद पूरी करके जाग चुका था। एक आकस्मिक सी प्रसन्न ताजगी मेरे दिमाग और मेरी शिराओं में थी। मैं जानता था अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं दोबारा तब तक नहीं सो सकता जब तक मेरी देह और मेरे मस्तिष्क को फिर से नींद की खुराक की जरूरत ना हो। मैं अपनी सारी इंद्रियों समूचे स्नायु तंत्र में सुबह की ताजगी और घास की महक से भरी स्वच्छ हवा का अनुभव कर रहा था। सबसे बड़ी बात यह कि मेरे दिमाग में कहीं कोई चिंता या तनाव का पता नहीं था। स्मृतियां कहीं विस्मरण के पार चली गई थीं। इतना खाली, इतना साफ, इतना हल्का हो गया था सब कुछ। मेरे पास करने को कुछ नहीं था। इतनी रात 2 बजे अकेले ऐसे संपूर्ण जागरण के साथ मैं क्या करता। एक बार सोचा कि बाहर सड़क पर निकल जाऊं, फ्रिज से निकालकर बर्फ जैसा ठंडा पानी पी गया। और तभी मैंने तय किया कि मैं अपनी फिल्म के बारे में सोचूंगा। मैंने सोचना शुरू किया। कई सार्थक और कई निरर्थक दृश्य मेरी स्मृति में आए, लेकिन अचानक ही मैं चौंक गया, बल्कि मैं डर गया। यह एक ऐसा अनुभव था जो कुछ पलों के लिए या शायद आने वाले लंबे समय के लिए आदमी को स्तब्ध कर देता है। जैसे आप बचपन में अपने बहुत पुराने विशाल घर के किसी हमेशा बंद रहने वाले कमरे में अचानक पहुंच गए हों अकेले, और वहां तमाम टूटी फूटी आधी अधूरी चीजों का अंबार सा बिखरा पड़ा हो। वे चीजें अजनबीपन में इतनी आकर्षक हों कि आप उनके अंबार में किसी अपनी इच्छित वस्तु को खोजने लग जाएं, और अचानक आपके हाथ में किसी दंत कथा, किसी बहुत पुरानी लोक कथा में वर्णित कोई चीज मिल जाए, कोई उपकरण या कोई पात्र। या आप अचानक कभी वर्षों पहले अपने किसी स्वप्न में देखी गई चीज को खोज डालें और हतप्रभ रह जाएं। आप आश्चर्य में चीख भी सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चीज जिसे आपने अचानक उस कबाड़ में संयोगवश खोज डाला है, और जो अपनी समूची वास्तविकता, ठोसपन, भौतिकता के साथ इस वक्त आपके हाथ में मौजूद रहता है, वह एक झटके में ही किसी दंत कथा, किसी मिथक, किसी लोक कथा, किसी गप या किसी स्वप्न की अवास्तविकता को खंडित कर देता है। वह चीज किसी अवास्तविक कथा, स्वप्न, अनुभव या घटना का वास्तविक प्रमाण होती है। मेरे साथ उस रात यही हुआ था। फिल्म के बारे में सोचते हुए मुझे अचानक पटकथा का ध्यान आया। शायद मैं फिल्म के आने वाले अंशों में अपनी भूमिका के बारे में जानना चाहता रहा हूं, या हो सकता है फिल्म के भविष्य के प्रति उत्सुकता ने ही मुझे यह ध्यान दिलाया हो। फिल्म की कोई पटकथा थी ही नहीं। इतने वर्षों से इतनी लंबी फिल्म बन चुकी थी और इतनी जरूरी बल्कि अनिवार्य चीज के बारे में अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं था। हद है कि अभी तक किसी भी पात्र ने कभी पटकथा की मांग भी नहीं की थी, बिना ये पूछे कि फिल्म में उसकी क्या भूमिका है और कौन कौन से संवाद उसे बोलने हैं। वे कहीं से भी आते थे और फिल्म में हिस्सा लेकर चले जाते थे। सबसे डरावनी बात तो यह थी कि स्वयं मैं अब तक किस आधार पर अपनी भूमिका निभा रहा था, इतनी तरह के अभिनय कर रहा था। क्या मैं किसी नशे में था या विक्षिप्त था? मैंने कभी पटकथा या कथानक के बारे में सोचा क्यों नहीं? उसी दिन से मैं इस फिल्म की पटकथा लिखने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं आपको बता चुका हूं, फिल्म वर्षों पहले शुरू हुई थी और उसमें ऐसी असंख्य निरर्थक और अपसर्ड भूमिकाएं भी हैं जिनके अनगिनत पात्रों को याद रख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी स्मृति पर सारा जोर डालकर एक एक दृश्य, एक एक शॉट याद कर रहा हूं, उन्हें कागज पर नोट कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि शायद एक कोई ऐसी रूपरेखा तैयार हो जाए जिससे पटकथा का अंतिम प्रारूप निर्मित हो सके। ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन मैं किसी लाइब्रेरी में पुराने दस्तावेजों, पांडुलिपियों और अखबारों आदि के ढेर में कोई संदर्भ या कोई अभिलेख खोज रहा हूं और अचानक मेरे हाथ पर लग जाए, यानी इस फिल्म की पटकथा। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि वह किसी अवास्तविकता का वास्तविक प्रमाण होगा, या कहीं इसका उल्टा तो नहीं, यानी यह फिल्म जो कि वास्तविक है उसका एक अवास्तविक प्रमाण? यह भी तो हो सकता है कि फिल्म में फिलहाल मेरी यही भूमिका निर्धारित हो, यानी अब तक बनी हुई फिल्म की पटकथा लिखने और किसी पुरानी लाइब्रेरी, किसी अभिलेखागार या किसी बहुत बड़े मकान में वर्षों से बंद किसी कमरे में बिखरी पड़ी अजनबी चीजों के अंबार में से अचानक उसे खोज निकालने की। आप समझ सकते हैं इस वक्त मैं वही भूमिका इस फिल्म में निभा रहा हूं। अब एक मैं आपको जो बहुत ही मेरी विवादित सी किताब थी, लंबी कहानी या उपन्यास जो भी कहें, पीली छती वाली लड़की, उसका एक हिस्सा छोटा सा ही मैं पढ़कर सुनाता हूं, जहां राहुल और अंजलि मिलते हैं। पीली छतरी वाली लड़की। नीम की छांव के नीचे अब राहुल और अंजलि थे, और उनसे थोड़ी ही दूर वो पीली छतरी थी जो रह रहकर हवा के झोंकों से कांप जाती थी। लगता था अभी कोई एक ऐसी हवा आएगी जिससे सिहर कर वह अपने पीले पंख फैलाएगी और तितली बनकर धीरे धीरे उड़ने लगेगी। सचमुच एक तितली भटकती हुई कहीं से आई और सीधे अंजलि के कंधे पर एक पल के लिए टिक गई। धत धत, अंजलि घबराहट में उठ खड़ी हुई। क्या हो गया? राहुल चौंका। अंजलि के कंधे पर बैठी तितली उड़ गई और मंडराती हुई छतरी के ऊपर जाकर बैठ गई। ताजुब था कि उस तितली का भी रंग पीला था, एक जीवित पीला रंग, ऐसा पीला जो उड़ता है, सांस लेता है, जीवित होता है और डरता भी है। उसी डर के कारण ही वह अंजलि के कंधे पर से उड़ा था। वो तो तितली थी, इसमें डरने की क्या बात थी? राहुल को अंजलि की घबराहट पर हंसी आई। अंजलि वापस घास पर बैठ रही थी। काट लेती कहीं तो, अंजलि ने कहा। तितली नहीं काटती। तुम्हें कैसे पता कि नहीं काटती? कहीं काट ही लेती तो। तितली नहीं काटती, राहुल ने बहस की, ततैया काटती है। अंजलि ने अपनी हार या शायद झेम पिटाने के लिए इस बहस को खत्म करना चाहा। सब एक ही बात है, तितली हो या ततैया। एक ही बात कैसे है? तितली कभी नहीं काटती, ततैया काट दिया करती है कभी कभी। राहुल इतनी जल्दी बिना समस्या को पूरी तरह सुलझाए बात खत्म कर देने के मूड में नहीं था। तुम्हें कभी काटा? ततैया ने, अंजलि ने पूछा। हाँ, दो तीन बार, राहुल बताने लगा। गांव में जहां हमारे खेत हैं, ट्यूबवेल की पानी की टंकी के पास पापा ने एक सीमेंट का बड़ा सा टैंक बनवा रखा है। वो कहते हैं कि हमाम है। गर्मियों में उस टैंक में नहाने में बड़ा मजा आता है। तुम उसमें नहाते हो कभी? अंजलि ने पूछा। क्यों नहीं? गर्मी की छुट्टियों में तो रात में साबुन और तौलिया लेके जाओ और उस टैंक में घुस जाओ, ग्रेट मजा। पता है वहां साबुन भी इतने जोरों से महकता है जितना यहां कभी नहीं महकता। ऐसा कैसे हो सकता है? साबुन तो एक ही होता है। नहीं, जंगल में खेतों के पास रात में साबुन ज्यादा महकता है, ये बात सच है, राहुल ने कहा। उस टैंक के पास बेले के पौधे उगे हुए हैं, उनके फूल भी रात में ज्यादा महकते हैं। ये क्या बात हुई? अंजलि चढ़ गई। अभी तुम साबुन के महकने की बात कर रहे थे, अब तुम बेले के महकने की बात करने लगे। ओह, तुम भी कभी वहां जाओ तो पता चले। रात में टैंक में नहाता हूं मैं तो साबुन और बेला दोनों महकते हैं। कभी लगता है मैं साबुन नहीं बेला लगा रहा हूं, कभी लगता है टैंक के बगल में साबुन के पौधे उगे हुए हैं। लेकिन जब तुम टैंक में रात में नहाओ ही नहीं तो पता कैसे चले? राहुल चिढ़ रहा था। लेकिन तुम तो ततैया की बात कर रहे थे, इसमें ततैया कहां है? अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा। वो तो दिन की बात है, दोपहर में टैंक के पास जो पानी बहता है उसमें खूब सारी ततैया आती हैं। एक बार दोपहर को मैं नहा रहा था, मैंने टॉवल और पैंट शर्ट ट्यूबवेल के पाइप पर रख दिए थे। नहाने के बाद जब मैंने टॉवल से पोंछना शुरू किया तो ततैया ने काट लिया, वो उसमें घुसी हुई थी। अंजलि जोरों से हंसने लगी। इसमें हंसने की क्या बात है? ततैया कभी काटे तो पता चले। राहुल को गुस्सा आया। नहीं, अगर वो कहीं टॉवल की जगह पैंट में घुसी होती तो? अंजलि फिर से हंस रही थी। राहुल ने देखा, हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू छलछला आए थे। कितनी मात्रा में हंसी है इस लड़की के भीतर। वे हंसती हुई आंखें राहुल पर ही टिकी थीं। अचानक राहुल को ऐसा ही लगने लगा जैसा टैगोर हॉस्टल के अपने रूम नंबर 252 की खिड़की से घाटी के नीचे के समतल मैदान को घेरने वाली अर्धवृत्ताकार सड़क पर धीरे धीरे रेंगते हुए उस पीले रंग के धब्बे को देखते हुए लगता था। उसे लगा वे हंसती हुई आंखें धीरे धीरे उसके भीतर उतरती जा रही हैं। उसकी शिराओं में बहते रक्त में दो नन्ही नन्ही चमकीली मछलियों की तरह तैरती हुई और उस लाल नदी में जो उसकी देह की नीली नसों के भीतर के अंधेरे में बह रही है, धीरे धीरे तिरती हुई वे उधर पहुंच रही हैं, जहां समूचे शरीर की सारी शिराएं और धमनियां एक दूसरे से आ मिलती हैं। उसी जगह जहां जीवन एक बहुत नाजुक और रहस्यपूर्ण जैविक घड़ी की टिक 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 में निरंतर धड़कता रहता है। जिस पल यह टिक टिक बंद, कहां है जीवन? वही जगह जहां हृदय है। एक बहुत धीमा बुखार धीरे धीरे राहुल पर चढ़ने लगा, ऐसा बुखार जिसमें संगीत जैसा कुछ घुला होता है। राहुल के कान उस बुखार के भीतर उस संगीत को सुनने लगे और वह उसमें डूबने लगा। कैसी धुन थी जो मुश्किल से बहुत सारा कान लगाने पर बहुत मुश्किल से सुनाई देती थी। वे दोनों चमकीली मछलियां उसकी देह के भीतर उस बुखार के पार हंसे जा रही थीं लगातार। क्या हो गया? अंजलि ने जब कहा तो राहुल जैसे नींद से जागा। तुम किसी बुत की तरह क्यों हो गए थे, स्टेच्यू? राहुल चुप था। उसने बड़ी कातरता के साथ अंजलि को देखा। वह अभी भी हंसती हुई सी लग रही थी, जबकि राहुल संगीत और बुखार में घिरा हुआ था। अच्छा चलो, फिर दूसरी बार तुम्हें ततैया ने कब काटा? अंजलि ने पूछा। एक बार मैं अपनी बाइक पर जा रहा था, पता नहीं कहां से एक उड़ती हुई आई और मेरे हेलमेट के भीतर घुस गई। बाप रे, इट्स हॉरिफाइंग। बंद हेलमेट के में सिर के साथ बंद एक ततैया? अंजलि सचमुच डर गई थी। हाँ, उसने मुझे काटा। मैं इतना डर गया अब हैंडल से हाथ कैसे छोड़ूं और हेलमेट कैसे उतारूं। फिर तुमने क्या किया? अंजलि चिंतित थी। मैं सामने से आ रही एक बस से टकराते बचा। एक्सीडेंट हो जाता एक ततैया की वजह से, राहुल ने कहा। धत, अंजलि ने कहा। वो डर गई थी। फिर वो निकली कैसे हेलमेट से? निकली क्या, मैंने एक किनारे बाइक रोककर हेलमेट उतारा तो वो उड़ गई, राहुल ने कहा। ओ, अंजलि ने जैसे छुटकारे की सांस ली। ये सोचना ही कितना अजीब लगता है, कितना डरावना, कि आपका सिर एक हेलमेट के भीतर एक ततैया के साथ बंद है। मेरा तो था ही, वो भी 60-70 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती एक मोटरसाइकिल के ऊपर, राहुल ने घमंड में मुस्कुराते हुए कहा। अंजलि अपने चिंत हो गई थी। लेकिन तुम्हारी बात से तब भी तो वो सिद्ध नहीं होता, उसने कहा। क्या? कि वो शुरू वाली बात। कौन सी बात? राहुल को समझ में नहीं आ रहा था। कि तितली नहीं काटती, अंजलि ने कहा। राहुल को हंसी आ गई। तितली नहीं काटती, आई बेट। ततैया काटती है, मैंने अभी बताया ना। लेकिन ततैया काटती है, इस बात से ये कैसे कह सकते हैं कि तितली नहीं काटती? अंजलि ने फिर बहस की। अजीब हो तुम भी। क्यों? तितली इसलिए नहीं काटती क्योंकि वो फूल पर बैठती है। ततैया टैंक के पास पानी पर और मिठाइयों पर बैठती है, राहुल ने तर्क दिया। मिठाई की दुकानों पर तुमने नहीं देखा कितनी सारी ततैया होती है, जलेबियों, गुजियों, बर्फियों के ऊपर। लेकिन फूलों पर तो मधुमक्खी भी बैठती है, हनी भी, वो तो काटती है। जबकि मक्खियां भी मिठाइयों पर बैठती हैं, लेकिन वो तो नहीं काटती, अंजलि ने फिर तर्क दिया। राहुल परेशान हो रहा था, इस लड़की को कैसे समझाए कि तितली नहीं काटती। वो इतना समझाने में तो कामयाब हो गया था कि ततैया काटती है, लेकिन ये तो सिर्फ आधी सफलता थी। अब जो बाकी की आधी असफलता थी उससे निपटना कठिन था। तितली के डंक नहीं होता इसलिए नहीं काटती, ततैया के होता है पीछे दुम के पास, राहुल ने काफी सोचकर किसी ट्रंप कार्ड जैसा तर्क प्रस्तुत किया। क्या तुमने देखा है किसी तितली के पीछे, उसकी दुम को कि वहां डंक नहीं होता, अंजलि का प्रश्न फिर हाजिर था। राहुल ने वो उम्मीद छोड़ दी, वह पस्त हो गया, वह सचमुच घास पर ढीला होकर रुड़क गया। बस बस, मैंने मान लिया प्रिंसेस डायना जी कि तुम्हारे कंधे पर जो तितली बैठी थी और जब उड़कर तुम्हारी छतरी पर जाकर बैठी हुई है वो काटती है। ठीक है, खुश, अब टॉपिक चेंज करें। अंजलि फिर हंसने लगी, शायद अपनी जीत पर, शायद राहुल को इस तरह आत्मसमर्पण कर देने पर। अब हंसने की क्या बात है, राहुल को अच्छा भी लग रहा था और चिड़ भी मच रही थी। अंजलि ने दाएं हाथ की मुट्ठी से घास की ढेर सारी पत्तियां नोची और उन्हें राहुल की ओर उछाल दिया। तुम्हारे साथ क्या है कि तुम सच बोलते हो लेकिन हार जाते हो, है ना, उसने हंसते हुए कहा। ये बात राहुल से पहले क्यों नहीं किसी ने कही, उसे लगा कितनी सरलता से यूं ही खेल खेल में अंजलि ने इसे जान लिया था। यह अंजलि के साथ उसका पहला खेल था जिसमें वह हार गया था, जबकि उसकी बात सही थी। लेकिन अपनी हार उसे इतनी अच्छी क्यों लग रही थी, वह भीतर से इतना खुश क्यों था। मैं नशे में टुल्ली हो गया की करिए की करिए, दिल चोरी साड्डा हो गया की करिए की करिए, राहुल ने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू कर दिया था। नीम के नीचे छा थी, ठंडी और गाढ़ी घनी हवा में सितंबर की दोपहर की आंच, ठंडक और नमी भी। मानसून अभी पूरी तरह गया नहीं था, कभी भी बादल फिर से आकाश में इकट्ठा हो सकते थे और कभी भी बरस सकते थे। छतरी वहीं रखी हुई थी और हवा में धीरे धीरे कभी कभी कांप जाती थी। उसके ऊपर बैठी हुई तितली पंख समेट कर शायद सो गई थी। तितली भी क्या सपने देखती है, राहुल ने कहीं पढ़ा था कि हम सिर्फ स्पेक्ट्रम में 7 रंग ही देख सकते हैं, जबकि तितलियां 1000 से ज्यादा रंग देखती हैं। इतना नन्हा सा उड़ने वाला, इतने सुंदर पंखों का कीड़ा, इसकी कितनी छोटी सी आंख होगी, फिर उसका रेटिना तो और भी छोटा, सुई की नोक से भी छोटा। उस सुई की नोक बराबर रेटिना पर कितने नन्हे इमेज बनते होंगे। लेकिन इमेज तो कुछ और नहीं, प्रकाश के संकेत भर होते हैं जिन्हें मस्तिष्क पढ़ता है। क्या तितली का जो दिमाग 1000 रंगों के संकेतों को अलग अलग पढ़ लेता है, वह हमसे अधिक विकसित और जटिल दिमाग होता होगा? और अगर ऐसा होगा तो वह कितना ज्यादा, कितना जटिल और कितने विकसित तरीके से सोचती भी होगी। इसका मतलब वह तितली जो अभी अभी अंजलि के कंधे से डर कर उड़ गई थी और अब उस पीली छतरी पर बैठी हुई सो रही है, वह इस समय 1000 से भी ज्यादा रंगों का एक बहुत जटिल, बहुत सम्मोहक, किसी अज्ञात का स्वप्न देख रही है। तितली के पास भाषा होती तो हम उसके सपने, उन रंगों और उसके लोक के बारे में जानते। लेकिन हो सकता है तितली की भाषा होती हो और जैसे हम उसकी आंखों द्वारा देखे गए 1000 रंगों को नहीं देख पाते, उसी तरह हम उसकी बहुत विकसित, बहुत जटिल और बहुत सारी अज्ञात ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों की भाषा को भी न सुन पाते हैं। अगर तितली लिख सकती, उसकी भाषा की कोई लिपि होती, क्या पता ऐसा हो वह फूलों पत्तियों पर बैठकर अपनी लिपियों में कुछ लिखती हो और हम उसे पढ़ ना पाते हो। ओह, दुनिया के जटिल से जटिल कंप्यूटर और चिप्स से ज्यादा जटिल है इस तितली का दिमाग। इस नन्हे से कीड़े के भीतर यह बायोजेनेटिक माइक्रोचिप किसने डाला? इसके पंखों पर किसने ऐसे चित्र बनाए? क्या वह बात सच थी? अंजलि ने पूछा। उसकी आवाज से राहुल जैसे किसी तंद्रा से जागा। कौन सी बात? वही जो अनिमा ने उस दिन कैंटीन में कही थी। कब? राहुल जानबूझकर अनजान बन रहा था। अरे, जब तुम्हारे हिंदी के एडमिशन के बाद हम वहां गए थे और तुमने समोसे और चाय का ट्रीट दिया था। अंजलि उसे याद दिलाने की गंभीर कोशिश कर रही थी, जबकि राहुल को याद दिलाने की जरूरत नहीं थी कतई। कौन सी बात, साफ साफ बताओ, राहुल ने पूछा। अंजलि कुछ उलझन में पड़ी, थोड़ा रुककर उसने कहा, यही कि तुमने एंथ्रोपोलॉजी छोड़कर हिंदी डिपार्टमेंट में इसलिए एडमिशन लिया। राहुल ने अंजलि को गौर से देखा, अपनी हार का बदला चुकाने का यही मौका था। किस लिए लिया? उसने सीधे सवाल किया बड़ी अबोधता से। इसीलिए, अंजलि ने आंखें तरेरी। किसी लिए? राहुल ने फिर से पूछा, पूछने की लंबाई उतनी ही बढ़ाते हुए। दत्त, अंजलि जुड़ गई, कोई बात नहीं, ऐसी जानने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी है। यह डर था जो अंजलि के ऐसा कहने से राहुल के भीतर पैदा हुआ। उसे लगा इसे पूछते हुए अंजलि अब हंसी के मूड में नहीं थी, वह सचमुच इसे जानने के लिए व्यग्र थी। अब यहां से हंसी खत्म होती थी और शुरू होती थी एक किस्म की तकलीफ, एक तरह की पीड़ा। उसने साफ साफ देखा कि अंजलि के माथे पर तनाव की कुछ उलझी हुई सी रेखाएं थीं। कितनी सुंदर हैं वे रेखाएं, लेकिन उन्हें उस माथे पर क्यों होना चाहिए? क्या यह इतना हंसने वाली लड़की इस तनाव में क्यों पड़े, वह भी उसकी वजह से? राहुल ने देखा अंजलि की आंखें उसी पर टिकी हैं, उनमें कोई उत्सुकता थी या याचना, कुछ तो ऐसा था जिसके पहले तब तक नहीं था। और राहुल को अपना गला सूखता सा लगा, वह बुखार जो कहीं दब गया था एक बार फिर उभरने लगा। उसने थूक घुटका, उसका गला सूख रहा था। उसने अंजलि को देखा और धीरे से कहा, हां। क्या हां? अंजलि की आवाज भी कमजोर और कांपती हुई सी लगी। वह सच था, राहुल ने कहा। उसने सिर झुका लिया और उंगलियों से एक दूध की लंबाई उसने सिर झुका लिया था और उंगलियों से एक दूध की लंबाई खोज रहा था। कहां से उगी है यह? कहीं से एक ठंडी हवाई, सितंबर में अगस्त की बची हुई नमी के साथ। घास की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थीं, एक चुप्पी वहां फैल गई थी। ये अमेरिका से बड़ा हो गया कुछ?
नहीं नहीं नहीं, है समय थोड़ा।
क्या पढ़िए?
मोहनदास और मोहनजी का अध्ययन के छोटे छोटे हिस्से।
मोहनदास का एक हिस्सा मैं छोटा सा पढ़ देता हूं, जहां वकील हर्षवर्धन सोनी जो यह प्रमाणित करने में लगा है कि मोहनदास ही असली मोहनदास है और प्रमाणित नहीं कर पाता, तो वह अपने जो न्यायिक दंडाधिकारी हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उनसे मिलने जाता है। इसके पहले कुछ इटैलिक्स में लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ देता हूं उसके साथ ही। यह सब कुछ उन्हीं दिनों की घटनाएं हैं जब समूचे एशिया के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक भारतीय स्त्री कम्युनिस्ट पार्टी के पुलिस ब्यूरो की सदस्य बनी थी। एक दूसरी स्त्री ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकरा दी थी और तीन लगातार हंसने वाली स्त्रियां संसार के उस सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह की जूरी के सदस्य तक बन गई थीं, जिसमें ऋत्विक घटक की स्वर्ण रेखा या कोमल गंधार या शैलेंद्र की तीसरी कसम की स्क्रीनिंग तक नहीं हो सकी थी। और यही समय था जब बगदाद के अबू गरीब जेल में एक अमरीकी महिला अधिकारी ने इराकी पुरुष कैदियों को नंगा करके उन्हें एक दूसरे के ऊपर लाद कर एक पिरामिड जैसा बना दिया था और अमेरिका का झंडा लेकर उनके ऊपर चढ़ गई थी। वह समय जब पावर ही दरअसल जेंडर को परिभाषित कर रहा था। वही समय जब दिल्ली के धौला कुएं के पास से उत्तर पूर्व की एक लड़की को कार के भीतर खींचकर राजधानी की हर वीआईपी सड़क पर 2.5 घंटे तक लगातार दिल्ली के 5 पुरुषों द्वारा बलात्कार किया जाता रहा और इम्फाल में मनोरमा के बलात्कार और हत्या के विरोध में कृष्ण की उपासना करने वाली सैकड़ों में तेई स्त्रियां गुस्से और हताशा में नंगी हो गई थीं, वही समय जब दो स्त्रियां सरदार सरोवर में 40,000 दलितों, आदिवासियों और गरीबों के घर, जमीन जायदाद को पानी में डुबा देने वाली परियोजना के खिलाफ लड़ाई हार गई थी और जल प्लावन में वन्य प्राणियों, वनस्पतियों, वृक्षों समेत सब कुछ डूब गया था। टीवी में उन कमजोर औरतों का रोता हुआ पराजित चेहरा कुछ दिनों तक दिखाई पड़ा था। वही समय जब मैं दिल्ली छोड़कर वैशाली आ गया था और मेरी छत से गाजियाबाद का वह झंडा कुछ साफ दिखाई देता था, जहां ठीक 15 साल अब 20 साल पहले उस क्रांतिकारी कलाकार और रंगकर्मी की हत्या हुई थी जिसका नाम सफदर हाशमी था। गजानन माधव मुक्तिबोध न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में सारी गवाहियों, सबूत, जांच रिपोर्ट, यहां तक कि दो दो जिलाधीशों की इंक्वायरी ने यह सिद्ध कर दिया था कि विश्वनाथ ही मोहनदास है। तो फिर जो गरीब सा बदहाल आदमी मोहनदास होने का दावा कर रहा है वो कौन है? इसका अदालत में चल रहे इस मामले से कोई सीधा कानूनी संबंध नहीं था। वह एक अलग केस हो सकता था अगर उसकी दरखास्त अदालत में कोई वकील वादी की ओर से दाखिल करे। हर्षवर्धन सोनी 3 दिन 3 रात तक सो नहीं पाया। वह अच्छी तरह से जानता था कि मोहनदास ही मोहनदास है, लेकिन इसे प्रमाणित कर पाना लगातार कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होता जा रहा था। उसने मुझे ईमेल भेजा, ये तो हद है, न मुझसे कुछ खाया पिया जा रहा है न रात में नींद आती है। उधर मोहनदास की भी यही हालत है। हर कोई जानता है कि असली मोहनदास यही है, लेकिन इसे साबित कर पाना मुमकिन नहीं रह गया है। क्या करूं, कुछ सोचता ही नहीं। मोहनदास और मुझे दोनों को धमकियां दी जा रही हैं कि चुप होकर बैठ जाओ। इस बीच पता चला है कि विश्वनाथ ने रास प्यारी राय को अपना वकील बना लिया है। उन्हें तो आप जानते ही हैं, सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता हैं, बहु नगर निगम के अध्यक्ष हैं और कई सरकारी गैर सरकारी संगठनों के प्रमुख हैं। मोहनदास के पक्ष में अब तक 4-5 लोग गवाही देने को तैयार हुए हैं, बीरन बैगा, गोपाल दास, बिहारी दास, रमोली, सितिया, लेकिन उनका हुलिया ही ऐसा है कि लगता है कि ऐसे गवाह तो 25-50 में कहीं भी मिल जाते हैं, भिकमंगे लगते हैं सबके सब। सोचता हूं मैं न्यायिक दंडाधिकारी से सीधे मिलकर देखूं। वे बीड़ी पीते हैं और कुछ अजीब से लगते हैं। जीएम मुक्तिबोध उनका नाम है, मराठी है लेकिन उनकी हिंदी गजब की है। कोर्ट के बाद सड़क के किनारे रामदीन के ठेले पर कड़क चाय पीते हैं। मैंने नोट किया है कि जब वे अदालत में मोहनदास की ओर देखते हैं तो उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। उनके माथे की एक नस उभरी हुई है और जब वे कुछ सोचने लगते हैं तो वो फूल जाती है। मुझे डर लगता है कहीं किसी दिन वह नस फट तो नहीं जाएगी। उनकी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे वे किसी जासूस या खुफिया की आंखें हों, जो धीरे से चुपचाप किसी की भी आत्मा के भीतर धंस कर उसका सब कुछ खंगाल सकती हैं। सुना है उनके घर में किताबें बहुत सारी हैं और वे 3 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं। एक विचित्र सी बात मुझे यह भी पता चली है कि जीएम मुक्तिबोध हैं तो प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, लेकिन सरकार ने उनके पीछे सीआईडी लगा रखी है। कोई दूसरा रास्ता न देखकर हर्षवर्धन ने एक तरह का जुआ खेला। किसी भी विचाराधीन मामले के संबंध में जज से मिलना, वह भी ऐसा जज जो कुछ रहस्यपूर्ण दिखता हो, एक जोखिम भरा फैसला था। अगर जीएम मुक्तिबोध नाराज हो गए तो उसका करियर बर्बाद हो सकता था। हर्षवर्धन सोनी का अतीत वैसे भी तमाम कठिनाइयों, संघर्षों और दुखों से भरा हुआ था। बेरोजगारी में भाई की हताश आत्महत्या उसकी स्मृति से एक पल को भी वजल नहीं होती थी। वकालत तो बस नाम मात्र की थी। उसके पास ज्यादातर वही लोग आते जिनकी जेब में महंगा वकील करने लायक रुपए नहीं होते थे। मोहनदास के मुकदमे में भी उसे कुछ नहीं मिल रहा था, ऊपर से उसे 5,000 रुपए खुद जुटाने पड़े थे। फिर भी उसने न्यायिक दंडाधिकारी से मिलने का जोखिम मोल लिया। हर्षवर्धन को आश्चर्य हुआ जब अपने फ्लैट में उसे देखकर गजानन माधव मुक्तिबोध के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वे पहले से ही उसके आने के बारे में जानते रहे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि हर्षवर्धन उनके पास आएगा ही आएगा। उन्होंने उसके लिए लकड़ी की एक पुरानी सी कुर्सी डाल दी और कहा, बैठो मैं चाय बनाता हूं। यह कहकर वे भीतर की ओर चले गए। हर्षवर्धन ने कमरे में नजर दौड़ाई, वहां हर चीज बेतरतीब थी। कई किताबें यहां वहां बिखरी पड़ी थी और उनमें से कई के पन्ने खुले हुए थे जिनके बीच में पेंसिल, कार्ड या पेड़ों के पत्ते फंसाए गए थे। शायद किताबों के वे पृष्ठ उन्हें बहुत पसंद होंगे और वे बार बार उन्हें पढ़ते होंगे। कमरे की हालत देखकर लगता था कि वे वहां अकेले ही रहते हैं। हर्षवर्धन को पता चला था कि उनका तबादला अक्सर वहीं आदिवासी या पिछड़े इलाके में कर दिया जाता है, जहां ऐसे मुकदमे नहीं आते जिनसे किसी बड़े आदमी या व्यापारी आदि को कोई नुकसान पहुंचे। हर्षवर्धन की निगाहों पर उठी, दीवार पर गांधी जी और मार्क्स के चित्र टंगे थे। एक कोने में गणेश जी की प्रतिमा थी। दाईं ओर की दीवार पर बुकशेल्फ था जिसमें कानून की तमाम किताबें ऐसे रखी थीं जैसे उन्हें वर्षों से खोला ही न गया हो। जिया मुक्ति वो चाय लेकर आ गए थे, साथ में एक तश्तरी में थोड़े से बेसन के सेब थे। चाय की पाई पर रखकर मुक्तिबोध तख्त पर बैठ गए। चाय बहुत कड़क और सड़क छाप थी, खूब औटाई और उबाली हुई। बहुत देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। हर्षवर्धन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बात उनसे शुरू करे। सामने की दीवार पर एक बहुत पुरानी घड़ी थी जो शायद चाबी भरने से चलती होगी, लेकिन लगता था जैसे वर्षों से किसी ने उसमें चाबी न भरी हो। वह बंद थी। बगल में एक कैलेंडर टंगा था जिसमें सिर पर पगड़ी बांधे हुए बाल गंगाधर तिलक की तस्वीर छपी थी। हर्षवर्धन ने देखा वह कैलेंडर सन 1964 का था। मैं जानता हूं, एक बहुत लंबी कहीं दूर जाकर लौटती हुई सांस के साथ आवाज आई, मोहनदास ही मोहनदास है। न्यायिक दंडाधिकारी की आवाज जैसे किसी गहरे कुएं या किसी बावड़ी में से आ रही थी, बहुत धीमी मध्यम आवाज। उन्होंने चाय की एक लंबी चुस्की भरी। उस घूंट और उसके स्वाद ने जैसे उनके माथे के तनाव को थोड़ा सा शिथिल किया। और वो दूसरा आदमी फ्रॉड है, वह सरासर इम्परसोनेट कर रहा है। मुझे पता है वह बिस्नाथ बल्कि नगेंद्र नाथ जूनियर डिपो ऑफिसर ही है जो A/11 लेनिन नगर में अवैध ढंग से मोहनदास की आइडेंटिटी चुरा कर रह रहा है। ही इज अ चीट, अ क्रिमिनल, अ स्काउंड्रल। उनकी आवाज बहुत धीमी लेकिन किसी धातु जैसी धारदार और दृढ़ थी। उन्होंने अपनी जेब से बीड़ी का बंडल निकाला और उसमें से एक बीड़ी निकालकर पहले उसमें उल्टी फूंक मारी, फिर तीली से उसे सुलगाकर एक गहरा कश लिया। हर्षवर्धन को लग रहा था जैसे वो अपने समय से बाहर किसी टाइम मशीन में बैठकर किसी दूसरे समय में पहुंच गया हो। उसने कहा, मैं यही बताने आपके पास आया था, लेकिन आपको कैसे पता कि असली मोहनदास कौन है? इसे जानना तो बहुत आसान है अगर आप में थोड़ी सी संवेदना और विवेक हो, मुक्तिबोध ने कहा और वे चिंतित होकर कुछ सोचने लगे। उन्होंने बीड़ी का एक खूब गहरा कश लिया। मैं 3 रातों से लगातार जाग रहा हूं। आई कांट स्लीप फॉर अ मोमेंट, इट्स अब्सर्ड एंड अ वेरी टेंस एक्सपीरियंस। उनकी उंगलियों के बीच फंसी हुई बीड़ी बुझने के करीब थी। उनकी आंखें जैसे कहीं और नहीं अपने आप को ही देखने लग गई थी। द होल सिस्टम हैज टोटली कोलैप्स्ड, जस्ट लाइक ट्विन टावर्स इन न्यूयॉर्क 9/11। नाउ व्हाट इज लेफ्ट फॉर द सब्जेक्ट एंड पुअर इज एनार्की एंड कैटास्ट्रॉफी। पूरी व्यवस्था ढह चुकी है न्यूयॉर्क की जुड़वा मीनारों की तरह। अब प्रजा और गरीबों के सामने सिर्फ अराजकता और विनाश ही बचा है। मुझे लगता है हम पूंजी और सत्ता के एक बिल्कुल नए रूप के सामने हैं। मोहनदास इज बीइंग डिनाइड ऑफ अ सिंपल एसेंशियल लीगल जस्टिस, क्योंकि वह न्याय को खरीद नहीं सकता। गजानन माधव मुक्तिबोध के माथे की नस फूल रही थी और उनकी उंगलियां कांप रही थी। वे बेचैन होकर खड़े हो गए थे। उन्होंने बुझी हुई बीड़ी को देखा और जेब से माचिस निकालकर उसे फिर सुलगाने लगे। हर सिद्धांत खत्म हो सकता है किसी समय। बहुत परिवर्तनकारी लगने वाली बौद्धिक और दार्शनिक संरचनाएं बदले हुए समय में बिल्कुल खोखले बागजाल, अनर्गल बकवास और ठगों के प्रवचन में बदल सकती हैं। इतिहास में ऐसा बार बार कई बार हुआ है। लेकिन उन्होंने बीड़ी का एक बहुत गहरा कश भीतर खींचकर सांस थोड़ी देर के लिए रोक ली। शायद वे अपनी चढ़ती हुई बेचैन सांसों को निकोटीन के धुएं से शांत करना चाहते थे। उन्हें खांसी आ गई। बाएं हाथ से उन्होंने अपनी छाती को कुछ देर तक दबाए रखा, फिर खरखराती आवाज में कहा, लेकिन मनुष्य के भीतर एक चीज ऐसी है जो कभी भी किसी भी युग में किसी भी तरह की सत्ता द्वारा कभी नहीं मिटाई जा सकती, और वह है न्याय की आकांक्षा। डिजायर फॉर जस्टिस इज इनडिस्ट्रक्टिबल, इट्स ऑलवेज इमोर्टल, इंसाफ की आकांक्षा कालातीत है। उन्होंने अपनी मध्यमा और तर्जनी के बीच फंसी बीड़ी खिड़की के बाहर उछल दी, वह बुझ चुकी थी।
धन्यवाद उदय जी। अभी आपने उदय प्रकाश से उनकी कहानियां सुनी और निसंदेह उनकी कहानियों पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। आप सब महसूस कर रहे हैं। अब मैं आदरणीय नामवर जी से आग्रह करूंगा कि वे उनकी कहानी कला के वैशिष्ट्य पर अपना वक्तव्य दें।
ज्योतिष जी के आग्रह को शिरोधार्य करते हुए भी जो कार्यक्रम में नहीं है उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि ऐसा सहृदय समाज जहां हो वहां संवाद भी होना चाहिए और श्रोताओं के बीच से कुछ लोगों के मन में यदि जिज्ञासाएं हों, टिप्पणियां नहीं, क्योंकि रूबरू आप हैं लेखक के अपने कहानीकार के सामने, तो ऐसी जिज्ञासाएं आप लोग कर सकते हैं। है समय, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा कहना नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि श्रोताओं की ओर से कुछ संवाद हो लेखक के साथ। ऐसे क्षण दुर्लभ होते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हुए प्रकाश, तो आप लोगों में से जो पूछना चाहें वो करें और इसे प्रश्नों को मॉनिटर करने के लिए जो सचिव हैं ज्योतिष जी वो करेंगे। जी जोर से बोलें।
साहित्य अकादमी में लगभग 36 वर्ष काम कर चुका हूँ, सेवाएं दे चुका हूँ। इसी जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी मेरे पति है, सारा संसार पति है। मैं जानना चाहूंगा इनकी उदय प्रकाश जी की प्रति
कुछ सुना ना।
हाँ
हाँ बोलो।
नहीं, ये थोड़ा मुश्किल है कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है। प्रेरणा हम सबको जो लेखक हैं होते हैं उनको शायद अपने जीवन से मिलती है, अपने अनुभवों से मिलती है, और जो पात्र हम चुनते हैं बनाते हैं वो उन्हीं पात्रों को ही चुनते हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं हमारे अनुभव उनसे प्रत्यावर्तित होते हैं। जैसे मोहनदास को चुना तो मोहनदास क्यों दिखा मुझे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्याय की आकांक्षा हम सब के भीतर है। हम सब जितने लोग, आप भी, हम सब भी, हम उस वर्ग से नहीं आते जिसके पास सत्ताएं हैं जो न्याय देती है। हम उस तबके के लोग हैं, उस हाशिए के लोग, जिन्हें न्याय की आकांक्षा होती है, जो न्याय चाहते हैं। तो प्रेरणा दरअसल मिलती है अपने जीवन की या अपने समय में जीवन से बाहर घटी हुई उन घटनाओं से जिनसे कहीं न कहीं हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। बस ये।
उदय जी ने आज कुछ छोटी कहानियां पढ़ी और लंबी कहानियों के कुछ पढ़े, दो कहानियों के, आपने छोटी कहानियां पढ़ने के दरमियान ये भी कहा कि इस कहानी पे कुछ कम बात हुई है। मेरा सवाल ये है कि आपकी लंबी कहानियों पर चर्चा अधिक कम हुई है बनिस्बत छोटी कहानियों के। लंबी कहानियां ही क्यों महत्वपूर्ण मानी गई है, चाहे वो मोहनदास हो, दिल्ली की दीवार और अंत में महात्मा या ऐसी कितनी कहानियां, क्या कहीं ऐसा है कि आप कहानी लिखते समय गश पे उस समय होते हैं जब आप लंबी कहानी रचते हैं, या फिर कहीं कहानी की तासीर ही ऐसी है कि उसको अपनी रचना प्रक्रिया में कुछ लंबा होना होता है?
नहीं, आपकी अंतिम बात मुझे लगता है बिल्कुल सच है, और ये कोई देखिए कि कोई च्वाइस नहीं होती है कि हम छोटी कहानी लिखें या लंबी कहानी लिखें। मुझे लगता है कि जैसा मैंने पहले कहा, जो अनुभव होते हैं और अनुभव की जो बनावट होती है वह काफी कुछ अपने अपना विस्तार या अपनी संक्षिप्ति वो लेके आती है, और जो कहानियां छोटी हैं उनको आप छोटी उससे ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि जैसे आप कोई आसव है उसमें आप ढेर सारा पानी मिला, और ऐसी कोशिश मैं देखता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत कम अनुभव होता है लेकिन उसको बहुत दूर तक लिखते हैं। दूसरी जो लंबी कहानियां हैं वो बन गई हैं लंबी, उनके उसके अलावा कोई चारा और था नहीं, और लोगों ने कहा कि इसमें ब्यौरे बहुत हैं, बल्कि हमारे गुरुदेव नामवर जी ने भी कहा कि एलोबोरेशंस बहुत होते हैं। मुझे कई बार लगता है कि एलोबोरेशंस भी जरूरी हैं, वो विवरण बहुत जरूरी है। अगर आप उनकी रीडिंग करें तो वो सीधे सिर्फ ब्यौरे नहीं है, उनमें उन ब्यौरों में कहीं ना कहीं एक वो जो समय है वो उसमें दर्ज रहता है। और मुझे लगता है कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, लेखक भी और पाठक भी, मुझे खुशी है कि मेरे ब्यौरों को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, तो ये सच है। और मुझे लगता है कि एलोबोरेशन बहुत जरूरी है किसी भी कविता के लिए भी और पेंटिंग के लिए भी, शायद किसी भी कला के लिए बिना विवरण के, बिना ब्यौरों के, बिना तफसील के नहीं बनता वो। जी,
और कोई
अनुभव के आधार पर पीली छतरी वाली लड़की के बारे में कितना महत्व आप और देंगे जितना आपने अपने अभी तक दिया है, उसके अलावा और कितना महत्व आप देंगे पीली छतरी वाली लड़की अपने अनुभव के आधार पर? क्योंकि बढ़ाई जा सकती है जैसा आपने कहा,
मेरे एक सवाल का कुछ तो जवाब मिल ही चुका है जो अभी जवाब दिया जयप्रकाश जी ने। तभी मैं ये जानना चाहता हूं कि जो रेफरेंसेस हैं, विवरण हैं, जो समय सापेक्ष होते हैं, साथ ही साथ वो घटनाक्रम वो किस तरह से अपने दिमाग में रखते हैं, कंप्यूटर में सेव करते हैं या उनकी कटिंग कर रखते हैं, इसके बाद कहानी के बीच में जब कहानी का पूरा खाका तैयार होता है उसमें आप रखते हैं उनको, उन घटनाओं घटनाक्रमों को, वो किस तरह का वो तरतीब होता है आपके दिमाग में, ये मुझे जानने की बार बार आपसे चेष्टा हुई है, मैं आज भी जानना चाहती
हूँ। मैं आपसे बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि कहते हैं ना कि ईश्वर किसी को दंड देता है, तो दंड एक है जो मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे लेखकों को मिलता है, वह स्मृति। स्मृति बहुत होती है और उसमें इतनी चीजें शामिल हो जाती है, मैं तो दंग रहता हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आप मार्केस का इस उम्र में पढ़िए, 80 साल की उम्र में लिखा जाता हुआ लिविंग टू टेल द टेल, अब उसमें बचपन से लेकर के वो किस कंप्यूटर में, कंप्यूटर था भी नहीं और हर जगह वो कलम या कागज लेकर के तो नहीं चलता रहा होगा, कि जब बहुत छोटा था जब अपनी माँ के साथ वो जा रहा था ट्रेन में, और लंबी रेलगाड़ी जो एक ऐसे इलाके से गुजर रही थी लैटिन अमेरिका के जहां आबादियां भी नहीं थी, और वहां जाकर के सुदूर वर्षों पहले छोड़े गए किसी छोटे से गांव कस्बे के एक घर को तक पहुंचना, फिर वहां उन पड़ोसियों से मिलना, कितनी सारी चीजें रही होंगी। आप सोचें कि कहां उसने दर्ज किया होगा, कहां उसने लिखा, कोई डायरी भी नहीं थी उसके पास। तो मुझे लगता है कि स्मृति एक ऐसी चीज होती है जिसके बिना शायद कोई रचना कभी संभव नहीं होती, और स्मृति संपन्नता शायद बहुत जरूरी है, यही मुझे लगता है।
एक बात मैं ये जानना चाहूंगा कि उदय जी अपनी कहानियों में जिंदगी के जितने रूबरू रहते हैं उनके बीच से गुजरते हुए सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेजिनेटिव कंसेप्ट जो आता है और उस कंसेप्ट को वो क्रिएटिविटी में कास्ट करते हैं, ये सबसे बड़ी ताकत है उनकी। मैं जानना चाहता हूं बिल्ली ऐसी जिंदगी में जिसमें इमेजिनेशन का कोई विंडो नहीं है, उसने इस चीज को कहां से लिंक करके, रेटिना जो एंटीना है कहां से लिंक करके वो चीज रिसीव होती है। खासतौर से एक अपने कहानी में संकेत दिया कि जब आप दिल्ली से वैशाली आए और वहां से वो शब्द हाशमी का ठिकाना दिखा और एक सूत्र बना, लेकिन ये चीज जाननी सिर्फ आपके लिए नहीं बहुत से क्रिएटिव राइटर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जानकारी केवल आपके ही लिए नहीं सबके लिए इम्पोर्टेंट हो। कृपया बताएं।
नहीं तो सवाल तो इसमें है नहीं, प्रश्न आप स्वयं कहानी कर रहे हैं बल्कि बैठे हुए हैं शिव कुमार मिश्र जी, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पास ही रहते, मेरे अभिन्न मित्र भी हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, जब मैं आया था वैशाली में आपको मजा आ गया सुनकर के, और अभी प्रतिलिपि वाले निकाल रहे हैं भय पर, डर पर एक अंक निकाल रहे हैं, उन्होंने पत्र लिखा क्या भय पर लिखे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि लगभग 5 साल पहले मैं वैशाली आया गाजियाबाद, तो मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं था यहां का, पहले वहां रोहिणी का था। तो मेरे पास ही रहते हैं शिव कुमार मिश्र जी, जानते होंगे आप, बड़े बुद्धिजीवी हैं और क्रांतिकारी भी रहे हैं, चारू मजूमदार इन सबके साथ गिरफ्तार भी किए गए थे, टॉर्चर भी हुआ था, तो उनसे बड़ी मित्रता है। आजकल बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आपका बैंक अकाउंट खुलवा देता हूं। हम लोग कैनरा बैंक गए, उन्होंने जाकर के वहां जो सहायक ब्रांच मैनेजर थे उनसे मुलाकात करवाई, उन्होंने बहुत स्वागत किया, बैंक अकाउंट खोल दिया। जो हम लोग बाहर निकल रहे थे मैंने मिश्रा जी को धन्यवाद दिया कि चलिए आपने मेरा बैंक अकाउंट यहां खुलवा दिया। मिश्रा जी ने कहा आप जानते हैं कौन थे? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जो सफदर के जो हत्यारे थे उनके चाचा थे, जताऊ थे। और उसके बाद मैं जहां रहता हूं ठीक उसके सामने प्रहलाद गढ़ी नाम का वो इलाका है, मैं बालकनी में खड़ा होता हूं तो वो घर साफ दिखाई देता है जिसने सफदर की हत्या की थी उसका घर, और जब छत पर खड़ा होता हूं तो झंडापुर दिखाई देता है जहां 20 साल पहले सफदर की हत्या हुई थी। अभी इस बार 1 जनवरी को हम लोगों ने कुछ होता है, देखिए कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो अपने होते हैं, निजी होते हैं। इस साल 20 साल पूरे हुए थे सफदर की मृत्यु को, तो हमने सोचा कि बुलाया गया तो हम लोग गए वहां कविताएं पढ़ने। राम कुमार कृष्ण जी भी थे, बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी। विमल कुमार थे, उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं पढ़ी, और मदन कश्यप थे जिन्होंने कविताएं तो अच्छी पढ़ी बल्कि वो एको करती रह गई उनकी कविता की पंक्तियां कि अत्याचारी के आगे झुका हुआ परचम क्यों है, हंसी खुशी खुशी के मौसम में अपनी आंखें नम क्यों है। तो होता है देखिए सबल्टर्न है, उत्सव बहुत होते हैं दिल्ली में, और आपका एंटीना कहां जाता है? मैं मानता हूं सफदर की स्मृति झंडापुर में होती है वो दिल्ली में होने वाले बड़े उत्सवों का एक सबल्टर्न है, और वहां पर जाके आप देखते हैं कि दूसरा भिन्न समुदाय होता है। वहां भोजपुरी गीत गाए गए, अवधि गीत गाए गए, अलग तरह के लोग होते हैं, उनके बीच में कविता पढ़ना, और आप पढ़ते हुए मुझे कई बार याद आता है निरुदक मेमोयर्स कि जब वो नाइट्रेट के माइंस में मजदूरों के सामने कविताएं पढ़ता था तो उसके हाथ में जो कविताएं पहले से लिखी रहती थी उन्हें वो भूल जाता था, वो कुछ और पढ़ने लगता था। तो वहां जाके आपको लगता है कि नहीं, अगर आपकी रचनाओं में कुछ ऐसा है जो उस समय के साथ जुड़ा हुआ है जिससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तब तो वो बात कुछ ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। वरना इसलिए बताऊं दिल्ली का ऑडियंस इस पर बहुत भरोसा नहीं होता, क्योंकि वो एक तरफ तो बहुत अधिक कला का लगातार एक्सपोजर होते होते वो इतना सैचुरेट कर गया, इतना शायद इतना संवेदनहीन तो नहीं कहूंगा मैं, उसके मुकाबले उन जगहों पर जाना और अपनी रचनाएं पढ़ना शायद ज्यादा अच्छा होता है।
आप अपने कहानियों में तरह तरह के प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन मोहनदास गए आपने हिंदी कवियों के या लेखकों के नाम को लेकर के उनको पात्र बना दिया, क्या यह सिर्फ पाठकों को चौंकाने के लिए या ऐसी कोई उपयोगिता रही है?
नहीं देखिए, मैं किसी बताऊं, उसी से जानबूझ के किया है और उसका बहुत बड़ा कारण है। बहुत बड़ा कारण यह है कि जो जुडिशियरी जिसको कहते हैं न्याय व्यवस्था, आपने देखा जो मैंने अभी अंश पढ़ा उसमें कहते हैं मुक्ति बोध की पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। तो जुडिशियरी मान लीजिए मैं सचमुच के किसी न्याय मजिस्ट्रेट को दंडाधिकारी का पात्र निर्मित का उससे न्याय दिला देता तो कहीं ना कहीं लगता कि जैसे ये सिस्टम तो नहीं कोलैप्स हुआ है। तो है क्या कि ऑथर ही अब न्याय दे सकता है। ऑथर को बहुत लोग प्रॉफिट मानते हैं, पैगंबर मानते हैं। तो मुक्ति बोध के बारे में हम सब जानते हैं कि जिस तरह के वो कवि थे, जैसा उनका जीवन था, जैसा उन्होंने जीवन जिया, तो शायद उसमें चुने गए हैं दो तीन। अब जैसे आप शमशेर बहादुर सिंह को मैंने एसटी बना दिया, अब आप कल्पना करिए कि इतना संवेदनशील कवि वो पुलिस के महकमे में है, तो क्या पुलिस को हम शमशेर जी की तरह सेंसिटाइज कर सकते हैं? तो ये बात जब मैंने लिखी तो बहुत सोचा नहीं था, लेकिन बाद में मेरे एक मित्र ने एक उपन्यास भेजा और आप जानते होंगे वो, उनका नाम जरूर सुना होगा आपने, डेविड ग्रॉसमैन। उनका उपन्यास है सी अंडर लव, और ग्रॉसमैन वही हैं जो इस समय इसराइल में हैं और इसराइल में रहते हुए वहां के युद्ध के विरोध में लंबा आंदोलन चला रहे हैं। उन्होंने भी अपने उपन्यास में सी अंडर लव में बिना मेरे जाने, क्योंकि उपन्यास बाद में आया वरना तो हिंदी में कहा जाता है, उदय प्रकाश ने नकल कर दिया। तो मेरी ही उम्र के हैं, 55-57 साल के, और उन्होंने उस उपन्यास में जिसको जज बनाया है वो पोलैंड के वो अभागे लेखक हैं जिनको हम बहुत मानते हैं, ब्रूनो शुल्ज। उसमें ब्रूनो शुल्ज उसमें जज बने हैं। तो देखिए शायद दुनिया भर में हम सब जानते हैं कि जिसको कहते हैं लोकतंत्र और पूंजीवादी लोकतंत्र या जो भी कहें कारपोरेट डेमोक्रेसी, वो मैं भी पढ़ रहा था परसों नर्सों, तो उसमें उन्होंने कहा है कि पहले लोकतंत्र जो है डेमोक्रेसी पहले धनतंत्र में बदला, प्लूटोक्रेसी में बदला, और इस समय वो क्लेप्टोक्रेसी में बदल चुका है, लुटेरा माफिया तंत्र में। तो ऐसे में कौन न्याय देगा? या तो हम धर्म में जाए, ईश्वर से न्याय की मांग करें। मुझे लगता है कि ईश्वर और आथर में, लेखक में या मुक्ति बोध में कोई अंतर नहीं है।
और वो आपने हमें दी थी, लेकिन क्या ज्ञान जी की तरह आपसे भी अभी सवाल किया जाना चाहिए कि आपने कविताएं लिखना कम कर दिया है? और दूसरा, उपरांत फिल्म से आप संतुष्ट नहीं थे, आपने इसके बारे में लिखा भी है, फिर भी मोहनदास को आपने बनने दिया। मेरा सवाल ये है कि मोहनदास फिल्म में एक बार फिर अपनी पहचान खो चुका है, तो ऐसा किस वजह से हुआ? और फिल्म पर और आपकी कविता लेखन पर मेरा सवाल
नहीं। पहला तो ये कि कविताएं मैंने सचमुच कम नहीं की हैं। एक चीज बताऊं आपको कि मेरा जीवन जैसा है, क्योंकि मैं कई बार कहता रहा हूं कि कोई भी कला हो उसके लिए लेजर चाहिए, अवकाश चाहिए और थोड़ी सी निश्चिंतता भी चाहिए। जिस तरह की भागा दौड़ी में रहना पड़ता, मैंने कहा ना कि जो ग्रिल करना जिसको कहते हैं, तो उस समय लिखने का समय नहीं मिल पाता। फिर कम तो नहीं किया है। मोहनदास फिल्म मैंने सचमुच नहीं देखी है और आप जानते होंगे मुझको बुलाया भी नहीं गया था और अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूं। हाँ, जो लोगों ने और खासतौर से आपके जितने भी युवा लोग हैं जो एशियन फिल्म फेस्टिवल में गए और जिन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने लिखा, कई जगह लिखा, अपने ब्लॉग्स में भी लिखा, अखबारों में भी लिखा, उससे तो लगा कि वो, चूंकि वो कहानियां पढ़ चुके थे, वो कहानी पढ़ चुके थे मोहनदास, तो उन्होंने माना कि फिल्म कमजोर है और शायद पात्रों का चयन ठीक नहीं हुआ। क्योंकि मैंने शुरू में जब पूरे स्क्रीन पे तो मैंने लिखा है और उसमें कोशिश मैंने की थी कि काफी कुछ बचा रहे कहानी का, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने इसलिए भी मुझे नहीं दिखाई कि वो हो सकता है कि उस पटकथा में भी उन्होंने काफी बदलाव किए होता। देखिए यह है कि जब बहुत कम बजट में और एक एम्बिशन पैदा हो जाती है कमर्शियल फिल्म बनाने की, तो ना वो बहुत अच्छी साधारण फिल्म रह जाती है और ना बड़ी व्यावसायिक फिल्म बन पाती है। शायद ये उसके साथ हुआ हो, मैं भी देखा नहीं इसलिए मैं कह नहीं सकता।
एक प्रश्न और हो सकता है, अंतिम होगा ये,
समय ही नहीं बचेगा सर, आपको बोलना है।
आप प्रत्यक्ष रूप से गांधीवाद से जोड़ा है आपने क्या मोहनदास कहानी को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गांधीवाद से जोड़ा है?
हाँ, क्यों नहीं, मतलब मैं गांधीवाद से तो नहीं, लेकिन गांधी जी जिस अंतिम मनुष्य की बात करते थे वो मोहनदास है। अगर आप देखें तो मैंने शायद उसके होता है कई बार किसी तरह का आप रूपक बना लेते हैं, और उसमें कहा भी है कि यह संयोग है कि उसके घर के सारे लोगों के नाम वही हैं जो गांधी के परिवार के लोगों के नाम थे। काबा है उसमें, उसमें कस्तूरी है, उसमें सभी लोग हैं, तो वो एको करता है। वो देखिए, वो कई कई बार जब आप कहानी पढ़ रहे हो उसके पात्रों का नाम और उनकी ध्वन्यात्मकता आपको कुछ अर्थों की ओर को बार बार याद दिलाती है, और मुझे लगता है वो काफी सफल रही है, क्योंकि कहानी पढ़ने के बाद ये तो नामी मोहनदास है, और मोहनदास का जो हाल आप किसी रूप में लें, राजनीतिक रूप कात्मक अर्थ में लें तो भी, और अगर उसको एक मामूली गांव के साधारण मेहनतकश ईमानदार एक इंसान के संघर्ष के रूप में लें, उसके उसके उसकी यंत्रणा के रूप में लें, तब भी कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के मुताबिक वो कहानी तो है, अपनी जगह पर है। और ये सच है, आप अगर जाएं और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ या झारखंड बिहार के जहां कोयला खदान है माइंस है उस क्षेत्र में जाकर देखें, ठीक ऐसे केसेस बहुत मिलेंगे आपको। कोई और मैं तो जानता भी हूं उस व्यक्ति को जिसके साथ है, और अभी भी वो सब जुडिस से अभी मामला चल रहा है, अभी भी ये फैसला नहीं हो पाया है कि असली कौन है, तो मैंने तो कहानी में न्याय दिलवा दिया उसको एक तरह से कहेंगे। तो ये भी आपने पढ़ा होगा हंस में राय जी बैठे उसमें तो चिट्ठी छपी थी कि उदय प्रकाश पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। तो ये है,
अब आपकी अनुमति हो तो दो शब्द मैं भी कह दूं।
सात बजे तक नहीं, 15 मिनट है कम से कम, सात शब्द से नहीं।
अच्छा ठीक है, 7 बजे तक समाप्त कर देंगे। सबसे पहले तो हिंदी अकादमी दिल्ली के नए सचिव का साहित्य अकादमी के सभागार में स्वागत, और ज्योतिष जी ने को रविंद्र भवन से इतना लगाव रहा है कि हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव होते ही अपना पहला महत्वपूर्ण आयोजन यही रविंद्र भवन में ही किया। इस सूझ के लिए भी दाद देनी चाहिए, और वो आयोजन भी उन्होंने उदय प्रकाश जैसे कहानीकार के कहानी पाठ से किया, और उसमें इस मौसम में भी इतनी अच्छी भागीदारी रही, उपस्थिति रही। वैसे साहित्य अकादमी अपने दरबार में या अपने रजिस्टर में, उसके रजिस्टर में उदय प्रकाश दर्ज नहीं है, और साहित्य अकादमी का रजिस्टर वो है जो उससे पुरस्कृत लोग हैं वो रजिस्टर में विशेष स्थान रखते हैं। इसलिए प्रकारांतर से ज्योतिष जी ने यह ऐतिहासिक परिघटना है कि उसी सभागार में जिसे मान्यता नहीं दी साहित्य अकादमी ने, उसी में उदय प्रकाश का कहानी पाठ रखा और श्रोताओं के साथ बातचीत की। ये एक जवाब भी है, एक अकादमी का दूसरी अकादमी का। उदय प्रकाश कहानी पढ़े और मैं अध्यक्षता करूं, यह भी पहला ही अवसर है। और इसे मैं अपना यादगार दिन मानता हूं। अपने प्रिय लेखक को सबके बीच सामूहिक रूप से इस प्रकार सुनने और प्रश्न उत्तर का कि मेरे लिए यादगार रहेगा। उदय प्रकाश का कहानी लेखन और उसका प्रकाशन मुख्य रूप से कम 25 वर्षों का है। दरियाई घोड़ा 1982 में छपा था, और अभी पेंगुइन इंडिया से मैंगोसिल, जिसमें तीन कहानियां हैं, पहले की तिरिच और दिल्ली की दीवार और उसके साथ मैंगोसिल, उसके साथ 2006 में आया है। तो 25 वर्षों में निरंतर लिखते हुए एक कथाकार का विकास आप देख सकते हैं कि कहां से शुरुआत की, दरियाई घोड़ा से लेकर के, और उसकी कहानियों को आप उसमें से देखें, टेपचू उसमें कहानी है ना, टेपचू उसमें कहानी है जो यादगार कहानी है, वो दरियाई घोड़ा में थी। वैसे बहुत सारी चीजें दूसरी विद्याओं में के लिए जेएनयू बदनाम है। कहानीकार उदय प्रकाश का जन्म जेएनयू में इनके आने के साथ ही होता है लगभग, कवि के रूप में भी और कथाकार के रूप में भी उसी दौर की। क्यों गलत कह रहा हूं, तथ्य से है कि नहीं? कविता लिखते रहे होंगे लेकिन पुस्तक तो तुम्हारी यही छपी है, जेएनयू में आने के बाद ही तुम्हारी कविता की पुस्तक छपी है, जेएनयू में आने के बाद ही तुम्हारी कहानी की पुस्तक छपी है, इसलिए तथ्य में गलत नहीं लिख सकते। पुस्तकें प्रकाशन कवि और कथाकार दोनों रूप में केदारनाथ जी बैठे हुए हैं जो साक्षी हैं इसके, तो इसलिए ये देख के भी कि जेएनयू कई चीजों के लिए अक्सर याद किया जाता है, उसमें जेएनयू का सौभाग्य है कि उदय प्रकाश का जो संबंध रहा है, जिसे बहुत मीठा नहीं है इनके लिए कि जेएनयू को याद करें, जहां तक समान रूप से कवि और कथाकार हिंदी कहानी के 100 वर्षों के इतिहास में आप देखें तो मुझे मुख्य रूप से तीन लेखक याद आते हैं, जयशंकर प्रसाद जो कवि भी थे और कहानियां भी लिखी हैं, यादगार कहानियां लिखी हैं जयशंकर प्रसाद ने, दूसरे अज्ञेय जिन्होंने जो कवि और कहानीकार भी दोनों और यादगार कहानियां हैं अज्ञेय की भी, उसके बाद तीसरा नाम ढूंढ करके एक कवि और कथाकार, कहानियों में कवित्व ले आने वाले ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कविताएं नहीं लिखी लेकिन कहानी में कविता करते हैं, लेकिन जिसको कहें कि सब्यसाची जो कहा जाता था, जो दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों से चलाते हों तीर, उदय प्रकाश समर्थ रूप में कवि के रूप में भी, और जैसा को लोगों ने कहा कि उस कवि का स्वरूप उनकी कहानियों में है, वो जो यानी कविता नहीं बनाते वो, लेकिन वो कवित्व के क्षण जो हैं, जो मोमेंट हैं, जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आप देखें तो एक कवि हृदय और कवि प्रतिभा मुखर होती है उन चीजों में, बिना कविताओं को उद्धृत किए हुए, या अंग्रेजी कविताएं भी कोट कर सकते हैं। तो ये जो सामर्थ्य है वो कुल मिलाकर के 100 वर्षों की कहानी के इतिहास में केवल तीन ऐसी प्रतिभाएं दिखाई पड़ रही हैं, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय तथ्य का उल्लेख कर रहा हूं मैं। जहां तक उदय प्रकाश की कहानियों का संबंध है, उनकी कहानियों पर कुछ लिखित रूप में भी कहा है और वक्तव्य तो बहुत से, लगभग जहां तक मुझे याद है उनकी अनेक कहानियों पर, वारिंग हस्टिंग्स का सांड पर मैंने उदयपुर में एक भाषण दिया था जो उनकी पत्रिका निकालते हैं, वो उसमें छपा भी था। उसी तरह से खास तौर से उदय प्रकाश दो और चीजों के बारे में कहना चाहूंगा, वो ये कि छोटी कहानी जो कुछ सुनी आपने, जो दक्षता की थी, एक बहुत छोटी कहानी, 4 लाइन की कहानी हो सकती है, और दूसरी ओर मैंगोसिल जैसी एक बड़ी कहानी जो 100 पृष्ठों की कहानी, जिसे लघु उपन्यास आप कह सकते हैं, तो कहानी कला को इस तरह साध लेना कि एक कहानी छोटी से छोटी भी कही जा सके और बड़ी कहानी कही जा सके, ये दोनों कलाएं साधने वाले बहुत कम कथाकार दिखाई पड़ते हैं और इस मामले में विलक्षण योगदान है। मैं अक्सर सोचता रहा हूं कि कुल मिलाकर के यदि 100 वर्षों के कहानी के इतिहास में से लेखकों को चुनना हो और 10 या 11 लेखकों को चुने तो निश्चित रूप से, और यानी जो जिसको पहले महत्वपूर्ण लेखक जो दो तीन गुलेरी का नाम लोग लेते हैं, लेकिन आप देखें तो प्रेमचंद से जो परंपरा शुरू होती है उसमें मोटे तौर से आप देखें तो, बैठे बैठे मैं देख रहा था, याद कर रहा था, प्रेमचंद, जैनेन्द्र, अज्ञेय यशपाल, कृष्णा सोबती, भीष्म साहनी, फणीश्वरनाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, निर्मल वर्मा और उदय प्रकाश, लगभग ये 10 ऐसे हैं जो निर्वाध रूप से हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि स्वाधीनता के बाद लिखने वाले लेखकों को देखें तो कहानी में जितनी तेजी से विकास हुआ है पिछले 60 वर्षों में कहानी के इतिहास में, उसके हो सकता है कि बहस हो, ये मेरी यदि फतवा नहीं है, लेकिन इतिहास में दर्ज होने योग्य और जो टिकेंगे जिनकी रचनाएं, जिनकी कहानियां, अनेक कहानियां टिकेंगी, निश्चित रूप से उसमें तमाम लेखकों के कहानी की तो पत्रिकाएं ही निकल रही हैं, नई से नई कहा और कहानी की प्रतिभाएं आ रही, उसमें निश्चित रूप से उदय प्रकाश अपना एक विशेष स्थान, महत्वपूर्ण टिकाऊ स्थान रखते हैं, इसके बारे में कोई शक नहीं है। मित्रों, अभी उदय ने एक बात कही और सही बात लगी मुझे, मुझसे मतभेद रखते हुए उन्होंने कहा, असल में कोई भी कलाकृति जो होती है वो एक आइडिया में नहीं होती बल्कि डिटेल्स या ब्यौरे में होती है, और उस ब्यौरे में, अब वो ब्यौरा का संतुलन, जैसे मैंगो सिल्क का जहां तक सवाल है, मैंगो सिल्क में शुरू में ये कहते हुए कि इसको अवश्य पढ़िए और 4 पन्ने का एक फिलॉसफी पूरी की पूरी बघा दी गई है, तो एक लंबी कहानी में 100 पेज की कहानी में तो चल जाता है, गुंजाइश होती है 100 पेज में, लेकिन आप 4 पृष्ठों का एक दर्शन पहले बता दें अपना, कहें कि इसको कहानी पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिए, लगभग वही है कि आप वही बातें कहानी के अंत में भी अगर कहें तो लोग छोड़ देंगे उसको,
इसीलिए शुरू में कह दिया।
लेकिन उसी मैंगो सिल में, जिसको बच्चा पैदा हो गया है और वो युवक वो दूध पिला रही है, 3 पेजों का वर्णन जिस तरह से उस स्त्री के साथ किया गया है जिसके साथ बलात्कार हो चुका है, बच्चे पैदा होते हैं, मर जाते हैं, 7 बच्चे पैदा हुए हैं, 8वां बच्चा पैदा हुआ है और वो भी मैंगो सिल का रोग लेकर के इसका सिर बढ़ता चला जा रहा है, और बाद में उसी बच्चे के साथ जब वो पैदा हो जाता है फिर एक और उसके बाद होता है, तो उसका जो मित्र है आता है और सूरी देख रहा है उसको, उसके पति के सामने वो दोनों छोड़ करके जाते हैं, दोनों को देखते हुए 2 पृष्ठों का अद्भुत वर्णन है जिसमें उसके मित्र को उसके प्रति एक विशेष प्रकार का लगाव अनुभव होता है, अनुराग होता है, प्रेम होता है, बहता एक और बहता हुआ दूध उसके स्तनों को सबको देखते हुए अद्भुत ब्यौरा दिया गया है, और यही संभाल सकते थे जो तनिक भी अश्लील नहीं होता है, लगता पूरी मर्यादा का निर्वाह करते हुए जिस तरह से वर्णित किया गया है, ऐसे अनेक प्रसंग हैं। लंबी कहानी लिखने में, साधने में बहुत कठिन कार्य है, और अंत में प्रार्थना, वारेन हेस्टिंग्स का सांड, पीली छतरी वाली लड़की, मोहनदास जिस पर इतनी बातचीत हुई है, और मैंगो सिल आखिरी बड़ी, किसी हिंदी के कथाकार ने ये लघु उपन्यास ऐसी लंबी कहानी कही है नहीं लिखी है। और उस लंबी कहानी को जिसको ये पक्की पक्का गाना है, आप द्रुत में इतनी देर तक विलंबित रूप में साधे रखना, यह साधना एक बहुत समर्थ कलाकार के हाथ में। और शायद इसका कारण यह है कि विश्वास जिसको कहें कि कथा में एक नरेशन होता है और दूसरा चित्रण होता है, इसीलिए इनकी कहानियों उपन्यासों में फिल्म की टेक्निक, जैसे कि वो पूरा पट कथा लिखते हों, अधिकांश कहानियां इनकी जो लंबी कहानियां हैं एक पट कथा के रूप में लिखी गई है। और यदि कोई समर्थ पट कथा यदि फिल्म बनाने वाला आदमी हो या चित्र बनाने वाला हो तो एक तरह का ये एपिक चित्रमाला के रूप में बनाए हैं, जो आमतौर से कुछ चीजें जैसे हुसैन ने पेंटिंग की है, तो हुसैन की पेंटिंग के एपिक रेंज के ये चित्र बनाते हैं। और शब्दों के द्वारा इस तरह का निर्माण किया जाए, उस क्षमता की बात मैं कहता हूं, उस साधना की बात मैं कहता हूं, जो कम कथाकारों में मुझे दिखाई पड़ती है। ऐसे लेखक का पर बहुत गंभीरता और गहराई से मुझे कुछ इन पर शोध प्रबंध भी हुए हैं, लिखे गए हैं, एमफिल के डिसर्टेशन तो हुआ है, पीएचडी का मुझे नहीं मालूम है, हुआ है पीएचडी का हुआ है, तो बहुत गहराई से उस पर विचार करने की जरूरत है। और वो क्षमता जिस भाषा के द्वारा ये चित्र बनते हैं उस भाषा पर विचार करने की गहराई से जरूरत है। मुझे खुशी है और आज का दिन मेरे लिए यादगार इस रूप में है कि खुद उनके मुख से और अपनी पसंद की चुनी हुई कहानियां उन्होंने सुनाई हैं, उसके लिए उनको वो इसी तरह से लिखते रहें, हम लोग सुनते रहें उन्हें और पढ़ते रहें, ये मौका फिर आए और फिर मिले हम लोग और देखें, इन सबको साथ हार्दिक शुभकामनाएं।
हिंदी को इंटरनेट की भाषा बनाने और कला की हर विधा से जोड़ने का हमने उठाया है बीड़ा, क्या आप हैं हमारे साथ? आज ही लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग, युवा उम्मीदों और प्रतिभाओं का हिंदुस्तानी मंच।